मुख्य समाचारों में लिस्मोर बाढ़ पीड़ितों के लिए आपदा भुगतान में वृद्धि से सरकार पर पक्षपात के नए आरोप। रूस का प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा डूबा और भारत दिल्ली में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। पता चला है कि फेडरल सरकार ने चुपचाप उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के बाढ़ प्रभावित निवासियों के लिए उपलब्ध आपदा अनुदान भुगतान की राशि में वृद्धि की है, लेकिन लेबर की सीटों वाली जगहों को फिर से छोड़ दिया। गार्जियन ने रिपोर्ट किया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए $642.70 प्रति पखवाड़े वसूली भत्ता भुगतान में $350 प्रति सप्ताह का टॉपअप उनके लिए जोड़ा गया है जो लिस्मोर स्थानीय सरकारी क्षेत्र में अस्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हैं। इस कदम से नए आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ है कि लिस्मोर निवासियों को विशेष समझा जा रहा है क्योंकि वहां वर्तमान में गठबंधन के मतदाता रहते हैं। ये आरोप पहली बार तब उठे थे जब लिस्मोर की नेशनल पार्टी सीट के निवासियों को $2,000 मूल्य की अतिरिक्त आपदा राहत निधि दी गई थी, जबकि बलीना, रिचमंड और क्लेरेंस वैली के लेबर वाली जगहों को शुरुआत में छोड़ दिया गया था। विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज ने राज्य के गुड फ्राइडे अपील के लिए और अतिरिक्त $2 मिलियन की घोषणा की है। इस साल की अपील में 2 साल में पहली बार मेलबर्न कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में किड्स डे आउट की वापसी देखी गई। रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल जहां फंडरेजर की घोषणा की गई थी, वहां श्री एंड्रयूज ने कहा कि ये फंडिंग विक्टोरियन समुदाय द्वारा जुटाए गए लाखों डॉलर्स के साथ साथ 1969 में परियोजना शुरू होने के बाद से गुड फ्राइडे अपील में $400 मिलियन से अधिक की राशि जुड़ेगी।
Over the journey, it's paid for equipment, it's paid for research positions, it's paid for just those extra things, not base funding, not things you would expect to be funded ordinarily, but just the extra stuff that takes the Royal Children's Hospital into that elite company of being not just a great paediatric hospital, but indeed being the world's best.
प्रधानमंत्री का कहना है कि तस्मानिया में कल यानी 14 अप्रैल को उनके चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान एक कार दुर्घटना में ग्रस्त 4 अधिकारी ठीक हो रहे हैं। गुड फ्राइडे चर्च सेवा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 2 अधिकारियों को छुट्टी दे दी गई है और 2 अन्य अस्पताल में हैं।
Been able to send messages to them, and I know that they're all very grateful. I'm hoping to be able to speak to them today, and so you know we're looking forward to their recovery. But they are doing well, and they are getting great support, and have had particularly great support overnight down there at Launceston General Hospital.
Shri Morrison का कहना है कि दुर्घटना याद दिलाती है कि लोगों को ईस्टर के दौरान सड़कों पर सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। सरकार के फ्रंट बेंचर्स ने फेडरल भ्रष्टाचार मॉनिटर की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की कमी को बचाते हुए उसे संभालने की कोशिश की है। स्कॉट मॉरिसन ने 2019 के चुनावी वादे पर एक फेडरल भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन इस सप्ताह कहा कि अगर गठबंधन संसद में एक और कार्यकाल जीतता है तो इसको स्थापित करने की कोशिश में प्रतिबद्ध नहीं होगा। अब फ्रंट बेंचर्स स्टुअर्ट रॉबर्ट और साइमन बर्मिंघम दोनों ने ही कहा है कि गठबंधन मई में चुनाव जीतने पर भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को स्थापित करने की कोशिश करने पर विचार करेगा। श्री बर्मिंघम ने स्काई न्यूज को बताया कि गठबंधन को फिर से चुने जाने पर अपने प्रस्तावित मॉडल को लागू करने का जनादेश होगा। ब्रिटेन के 3 नागरिकों पर ऑस्ट्रेलिया में $28 मिलियन मूल्य के क्रिस्टल मेथ के कथित आयात का आरोप लगाया गया है। इस सप्ताह संगठित अपराध साझेदारी के तहत तीनों को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल के अधिकारियों ने जुलाई 2021 में एयर कार्गो जहाजों के अंदर 24 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ युक्त 24 प्लास्टिक बैग्स की एक खेप की खोज की थी। पुलिस का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रग्स की स्ट्रीट वैल्यू यूके की तुलना में 4 गुना अधिक है। रूस का प्रमुख युद्ध पोत मॉस्कवा डूब गया है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेना ने ब्लैक सी मिसाइल क्रूजर को मार गिराया, जबकि रूसी अधिकारियों का कहना है कि कारण बोर्ड पर एक अस्पष्टीकृत आग है। युद्धपोत का नुकसान मॉस्को के लिए एक बड़ी सैन्य और प्रतीकात्मक हार होगी, क्योंकि इसके सैनिक पूर्वी यूक्रेन में उत्तर के बहुत से पीछे हटने के बाद नए सिरे से आक्रमण के लिए संगठित हुए हैं। अमेरिका यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर हमले के इन दावों की पुष्टि करने में असमर्थ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का कहना है कि ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है।
This is their flagship, the Moscow, and they have now been forced to admit that it has been badly damaged, and they've had to kind of choose between two stories. One story is that it was just incompetence, and the other was that they came under attack, and neither is a particularly good outcome for them.
यूक्रेन के मुख्य अभियोजन का कहना है कि रूस द्वारा यूक्रेन में किए गए कथित युद्ध अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजन करीम खान के साथ एक ब्रीफिंग में इरीना वेंडिक्टोवा ने कहा कि वो समझती हैं कि मामलों की मात्रा और युद्ध अभी भी जारी होने के कारण प्रक्रिया में तेजी नहीं होगी। श्री खान का कहना है कि आरोपों की जांच में सभी सबूतों का अध्ययन होगा, लेकिन जोर देके कहा कि इसे कुछ तत्कालिकता के साथ किया जाना चाहिए।
We have to check what is the truth, what does it show, who if anybody is responsible, if crimes may have been committed, and we go step by step, but we should do so with some urgency. We should do so with the realization that already, for whatever reason, by whatever means, people have died. Buildings have been destroyed. This isn't fake. We have seen those people. We have seen those buildings.
Tesla ke CEO एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी को निजी बनाने की आवश्यकता है ताकि ये विकसित हो और एक मुक्त अभिव्यक्ति का मंच बने। श्री मस्क वर्तमान में ट्विटर के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं और इनके सबसे लोकप्रिय उपयोगकर्ताओं में से एक हैं, जिसके लगभग 82 मिलियन अनुयायी हैं। कंपनी का कहना है कि अरबपति ने ट्विटर के शेष शेयरों को $54.20 प्रति शेयर पर खरीदने का प्रस्ताव दिया है, यानी कुल $58 बिलियन का प्रस्ताव। निवेश फर्म वेडबुश के विशेषज्ञ डैनियल इवेस का मानना है कि इससे ट्विटर की बिक्री किसी न किसी रूप में शुरू होगी।
मस्क सिंगल-हैंडेडली ट्राइंग टू बाय ट्विटर वाज नॉट एनीवनस प्लेबुक गोइंग 2022. But because of the freedom of speech issue, and it's become a divisive area that Musk has now inserted himself in, he's trying, as the richest person in the world, to basically own Twitter. $43 billion, he's obviously the only person in the world that can have access to that type of money. Probably about half that will be done in debt. And Twitter, from a corporate defense perspective, the board's back against the wall.
ऑस्ट्रेलिया गोल्फ के महान खिलाड़ी जैक न्यूटन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके परिवार के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। न्यूटन 1989 ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन थे और उन्होंने PGA टूर पर भी एक बार जीत हासिल की और यूरोपीय टूर पर 3 बार विजेता रहे। और भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 40 दिनों में COVID-19 के सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए गए। पॉजिटिविटी रेट 2.39 पहुंच गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल गुरुवार को माना कि दिल्ली के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता की बात नहीं है और सरकार इस पर नज़र रखे हुए है। और अपार्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 74 सेंट और भारत के ₹56.53 के बराबर है। खेल समाचारों में IPL 2022 के 24वें मुकाबले में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला रहा। गुजरात टाइटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की शानदार पारी के दम पर 192 रन बनाए और इसके जवाब में राजस्थान की टीम 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ गुजरात ने पॉइंट टेबल में राजस्थान के शीर्ष स्थान को अपने नाम कर लिया। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। सिडनी में भी मुख्यतः धूप, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।